आज है 28 जून दिन शुक्रवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। जापान के ओसाका में G20 देशों का दो दिवसीय सम्मेलन आज से आरंभ।
We hoping to have summit meeting between US and China.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
व्यापार के मुद्दे पे भारत पर दबाव डालकर अमेरिका ये भी चाहेगा कि भारत अमेरिका से और ज्यादा हाथ हथियार जो भी खरीदने हैं खरीदे।
क्रिकेट विश्व कप में वेस्ट इंडीज को 125 रन से हराने के बाद भारत सेमीफाइनल से बस एक कदम दूर।
इंडिया प्रोफेशनलिज्म से बहुत खेल रहा है, इसलिए ईस्ट और वेस्ट
इंडिया इज द बेस्ट।
और सुनिए महिलाओं को जागरूक करने का अनोखा तरीका। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। जापान के ओसाका शहर में आज से दो दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं। सम्मेलन से इतर मोदी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत और अमरीका के व्यापारिक रिश्तों पर बातचीत हो सकती है। ट्रंप ने इस मुलाकात से पहले एक ट्वीट कर मोदी से कहा है कि वो अमरीकी उत्पादों पर बढ़ाए टैरिफ को कम करें। अमरीका की सर्वोच्च अदालत ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें साल 2020 की जनगणना में लोगों से उनकी नागरिकता संबंधी प्रश्न शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने फैसले में बताया कि अधिकारी इस प्रश्न को शामिल करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बता सके। अमरीका में कई मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रश्न को शामिल करने के खिलाफ अपील दायर की थी। न्यूयॉर्क राज्य की अटॉर्नी जनरल लेटेसिया जेम्स ने एक रैली को संबोधित करते हुए कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा,
Every single person in this country deserves to be counted, plain and simple. And today, thanks to the Supreme Court's decision,
हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को जनगणना में शामिल होने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस अधिकार को बरकरार रखा है। ट्रंप प्रशासन जनगणना का राजनीतिकरण कर हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम सभी अडिग हैं और न्यायपालिका हमारे साथ है। ये थे न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिसिया जेम्स के शब्द। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में विपक्षी उम्मीदवार इकरम इमामगुल को मेयर नियुक्त किया गया है। इकरम जब इस्तांबुल के प्रशासनिक भवन में पद ग्रहण करने पहुंचे तो वहां भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। इमामगुल ने इस्तांबुल की जनता की भलाई के लिए काम करने की शपथ ली। साथ ही उन्होंने अपने देश को यूरोपीय संघ में शामिल करने की लक्ष्य की तरफ भी इशारा किया। इमामगुल ने सत्तारूढ़ AK पार्टी को दो बार चुनाव में हराया। पहले तो मार्च के महीने में बेहद कम अंतर से और बाद में इसी महीने दोबारा हुए चुनाव में 800,000 मतों के अंतर से उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार को हराया। उन्होंने अपनी जीत को सत्ता पक्ष के लिए एक स्पष्ट संदेश बताया। इकरम इमामगुल ने कहा, इस्तांबुल की जनता ने अपने वोट के जरिए उन लोगों को सबक सिखाया है जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे। लोगों ने कहा है कि गणतंत्र अमर रहे, लोकतंत्र अमर रहे। ये थे इस्तांबुल के नए मेयर इकरम इमामगुल के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासन मुद्दे पर कठोर सोच की तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के उस फैसले को बड़ी भूल बताया है जिसमें उन्होंने लाखों शरणार्थियों को जर्मनी में रहने की इजाज़त दी है। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में पुतिन ने उन उदारवादी विचारों की आलोचना की जो पिछले कई दशकों से पश्चिमी देशों पर हावी रहे। उन्होंने कहा कि उदारवाद के साथ बहुसंख्यक लोगों के हितों में टकराव पैदा होता है जिससे प्रवासन और बहुसंस्कृतिवाद पनपता है। ट्विटर ने बड़े राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के संबंध में अपनी नीतियों में कुछ बदलावों की घोषणा की है। इसके अनुसार अब अगर कोई राजनेता या सरकारी अधिकारी अभद्र टिप्पणी और उत्पीड़न से जुड़े नियमों को तोड़ता है तो उस ट्वीट को वैसे ही रहने दिया जाएगा, लेकिन बाद में उस शख्स को सूचित किए बिना वह ट्वीट एक चेतावनी के साथ हटा दिया जाएगा। यह नया नियम उन्हीं राजनेताओं पर लागू होगा जिनके 1,00,000 से अधिक फॉलोवर होंगे। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है। दिन की शुरुआत कीजिए आप नमस्कार भारत के साथ। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम है संदीप सोनी। पश्चिमी जापान के सबसे बड़े शहर ओसाका में G20 देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से आरंभ हो रहा है। पिछले साल ब्यूनस आयर्स में हुए सम्मेलन के बाद जापान को इस बार के सम्मेलन की मेजबानी हासिल हुई थी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने संदेश में कहा है कि वे इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सम्मेलन से पहले जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो ने चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर पर चिंता जताई है।
We hoping to have summit meeting between US and China.
जापान के विदेश मंत्री कह रहे थे कि हम अमेरिका और चीन के बीच मीटिंग की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों के बीच ट्रेड वॉर की वजह से मांग और आपूर्ति की वैश्विक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। दो देशों के बीच ट्रेड वॉर का असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अमेरिका और चीन की तरह अर्थव्यवस्था से जुड़े मसले अन्य सदस्य देशों के बीच भी हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज होने वाली मुलाकात से एक दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि भारत को अमेरिका पर लगाए टैरिफ वापस लेने होंगे। भारत और अन्य देशों के संदर्भ में G20 सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर किस तरह विचार होने की संभावना है, यही समझने के लिए हमारी सहयोगी भूमिका राय ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर SD मुनि से बात की।
ट्रंप की दो परेशानियां हैं। एक तो ये कि वो इस एजेंडा पे चुनकर आए हैं कि वो अमेरिका को आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सशक्त बनाना चाहते हैं, और इसीलिए जिन जिन भी देशों के साथ में अमेरिका का नेगेटिव व्यापार है, घाटे का व्यापार है, उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो चीन पे भी अटके हुए हैं और भारत के ऊपर भी आ गए हैं अब। लेकिन भारत के ऊपर जो उन्होंने कदम उठाए, हमने जो कदम उठाए हैं वो उसकी प्रतिक्रिया में उठाए हैं, भारत ने उसकी प्रतिक्रिया में उठाए हैं। और जब बातचीत होगी तो मैं समझता हूँ मोदी जी साफ कहेंगे कि जो आपने प्रतिबंध लगाए थे उनको हटा लीजिए, तो हम भी कोशिश करेंगे कि जो हमने टैरिफ बढ़ाए हैं उनको नहीं बढ़ाएंगे। तो ये बातचीत का सिलसिला इसी आधार पर होगा दोनों के बीच में। बाकी ट्रंप की दूसरी समस्या जो है वो ये भी है कि वो अब एक साल में चुनाव में जाने वाले हैं, और चुनाव में जाने से पहले वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये बताना चाहते हैं कि देखिए अमेरिका फर्स्ट का जो मेरा दावा था उसको मैं चाहे दोस्त मुल्क हो चाहे मेरा प्रतिस्पर्धी मुल्क हो, मैं सबके साथ बराबर ढंग से करता हूँ। तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी फीड करना चाहते हैं। उसी में उन्होंने भारत के ऊपर अभी जो रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई है वो भी एक तरह से उससे नाता रखती है, और व्यापार का मुद्दा भी है। और मैं इस बात को रूल आउट नहीं करता हूँ कि व्यापार के मुद्दे पे भारत पर दबाव डालकर अमेरिका ये भी चाहेगा कि भारत अमेरिका से और ज्यादा हाथ हथियार जो भी खरीदने हैं खरीदे ताकि अमेरिका के व्यापार को फायदा बने।
दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। हालांकि कुछ ऐसी संभावनाएं दिखी कि शायद ये ट्रेड वॉर एक सुलह में बदल जाए, इस तरीके की खबरें आई, लेकिन क्या आप ट्रेड वॉर को लेकर के कुछ सहमति बन पाएगी?
नहीं, इसका G20 के समिट में इस पे ज्यादा चर्चा, लोग अपनी अपने जो कंसर्न है उनको व्यक्त जरूर करेंगे, लेकिन असली बात ये आएगी जब ट्रंप साहब और प्रेसिडेंट शी आपस में मिलेंगे और बात करेंगे। G20 से कुछ ही दिन पहले अमेरिका से ट्रंप साहब ने भी बयान दिया, उनके जो ट्रेड कॉमर्स सेक्रेटरी है उन्होंने भी बयान दिया कि जो मीटिंग होगी प्रेसिडेंट शी के साथ उसमें हम अपने व्यापार के मसलों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों को तंग कर रहा है। देखिए इससे जो भी प्रतिबंध उन्होंने लगाए हैं उससे कोई अमेरिका को भी बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा, जो सामान जिस ढंग से आना चाहिए उनको भी दिक्कत है और चीन को भी दिक्कत है।
आपको लगता है क्या कि ईरान का मुद्दा भी यहाँ उठेगा?
नहीं, ईरान का भी उठेगा। मैं समझता हूँ अमेरिका भारत और रूस के मसले पर भी बात करेगा, जो उनकी मोदी जी की बातचीत होगी ट्रंप से उसमें ये मुद्दे, ईरान शायद ज्यादा नहीं आए लेकिन रूस वाला मुद्दा बहुत ज्यादा आएगा।
ये थे प्रोफेसर SD मुनि। आइए G20 सम्मेलन से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों पर एक नजर डालते हैं नवीन नेगी के साथ।
25 सितंबर 1999 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में विश्व के 7 प्रमुख देशों के संगठन G7 ने एक नया संगठन बनाने की घोषणा की थी। उभरती आर्थिक ताकतों की बुरी वित्तीय स्थिति से बने चिंता के माहौल के बीच गठित इस संगठन का नाम दिया गया G20। इस संगठन के गठन के समय इसका उद्देश्य था विकसित औद्योगिक देशों के साथ साथ उभरते बाजारों को जोड़ना, जिनमें प्रमुख थे चीन और भारत। ये संगठन कितना महत्वपूर्ण है, यह बात इसी से साफ हो जाती है कि इसके सदस्यों में दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देश शामिल हैं। G20 के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमरीका और यूरोपीय संघ। विश्व अर्थव्यवस्था में ये सभी मिलकर 80% GDP का योगदान देते हैं। जापान के ओसाका में हो रहे G20 के इस सम्मेलन की थीम वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश, नवाचार, पर्यावरण और ऊर्जा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, विकास और स्वास्थ्य हैं। जापान में G20 सम्मेलन का आयोजन पहली बार हो रहा है।
जापान के ओसाका में G20 सम्मेलन का आज पहला दिन अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान में गुरुवार को हुए मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 125 रनों से हरा दिया। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 268 रन बनाए, जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 143 रन किसी तरह बना सकी। भारत की जीत के बाद मैनचेस्टर में क्रिकेट के दीवाने कुछ इस अंदाज में नजर आए।
एक्साइटेड है,
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इंडिया जीतेगा?
बिल्कुल, इंडिया है और क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम।
किसने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने?
बुमराह।
बैटिंग में विराट कोहली बैटिंग अच्छा किया, क्योंकि वो बॉलिंग पिच था तो क्या ना बॉल मूव नहीं हो रहा था, इसलिए वो बहुत अच्छे से वो प्रोफेशनलिज्म दिखा दिया, वो बहुत अच्छा खेला।
शमी ने अच्छा,
वेरी गुड परफॉर्मेंस। मोहम्मद शमी, ही इज ब्रिलियंट, एक्सेलेंट बॉलिंग।
जसप्रीत बुमराह था, वो भी अच्छा कर गया। बूम बूम बुमराह।
जब क्रिस गेल का विकेट गया तो आपका क्या रिएक्शन था?
बहुत खुशी आई, बहुत खुशी, बहुत खुशी आई थी। वो बढ़िया बैट्समैन है वो।
इंडिया प्रोफेशनलिज्म से बहुत खेल रहा है, इसलिए ईस्ट और वेस्ट,
इंडिया इज द बेस्ट।
मैनचेस्टर में भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थकों से बात कर रही थी BBC संवाददाता गगन सबरवाल। इस जीत के साथ ही भारत अब सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के और ज्यादा करीब पहुंच गया है। भारत ने अभी तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 में जीत कर और एक बेनतीजा रहे मैच के आधार पर उसके कुल 11 अंक हैं। अंक तालिका में भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए भारत को अपने बचे हुए 3 में से सिर्फ 1 मैच और जीतना होगा। भारत का अगला मुकाबला रविवार 30 जून को इंग्लैंड के साथ होगा। वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज इस मैच में हार के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से ही बाहर हो गया है। भारत प्रशासित कश्मीर में अपने 2 दिन के दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया। खास बात यह रही कि गृह मंत्री के दौरे पर अलगाववादियों ने कश्मीर बंद का आह्वान नहीं किया, जैसा कि वो हमेशा करते थे। घाटी के जमीनी हालात को समझने वाले विश्लेषक इसके मायने तलाश रहे हैं। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठकें की और घाटी में सुरक्षा व्यवस्था का गहराई से जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर में चरमपंथ के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने 2 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सुरक्षा के सख्त प्रबंध करने के आदेश जारी किए। गृह मंत्री ने गुरुवार को हालिया दिनों में चरमपंथी हमले में मारे गए पुलिस अधिकारी अरशद खान के घर जाकर परिवार वालों के साथ मुलाकात की और शोक व्यक्त किया। गौरतलब है कि कश्मीर के अलगाववादी नेता बीते 30 वर्षों से हर उस मौके पर कश्मीर बंद बुलाते आए हैं जब भारत सरकार का कोई भी हाई प्रोफाइल नेता कश्मीर के दौरे पर आया हो, लेकिन अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के दौरान अलगाववादियों की ओर से कश्मीर बंद नहीं बुलाया गया। कश्मीर के राजनीतिक विश्लेषक अलगाववादियों के बंद न बुलाने को कैसे देखते हैं? पत्रकार और विश्लेषक हारून ऋषि।
ये हमेशा ट्रेंड रहा है कि जब भी भारत का कोई बहुत बड़ा अहदेदार जैसे कि होम मिनिस्टर श्रीनगर का दौरा करने आते थे तो उस दिन हड़ताल की कॉल दी जाती थी। लेकिन गालिबन मुझे लगता है उसकी वजह यह है कि यह तासुर दिया जा रहा था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं वो बातचीत के लिए तैयार हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने एक बयान भी जारी किया था कि हुर्रियत के लीडर्स बातचीत के लिए तैयार है। जाहिर है कि गवर्नर इंतजामिया के सरबरा है और उन्हें इंफॉर्मेशन तक रसाई होती है। वाकई हम यकीन रखते हैं कि हुर्रियत लीडर्स वाकई बातचीत के लिए तैयार है। को इसी तनाजुर में देख रहा हूँ कि शायद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने इसीलिए हड़ताल की कॉल नहीं, वो एक पैगाम देना चाहते थे बातचीत के लिए माहौल तैयार करने के हवाले।
हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताया था कि कश्मीर के अलगाववादी भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। राज्यपाल के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौली उमर फारूक ने बताया था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीर समस्या के हल के लिए हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने कश्मीर घाटी का दौरा एक ऐसे समय में किया है जब कश्मीर में बीते चार वर्षों से चरमपंथियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान जारी हैं और कई सारे अलगाववादी नेता और कार्यकर्ता भारत की जेलों में बंद हैं, जिन पर भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों ने टेरर फंडिंग और दूसरे मामले दर्ज किए हैं। सुरक्षा बलों ने बीते साल मुठभेड़ों के दौरान 250 से ज्यादा चरमपंथियों को मारने का दावा किया था, जबकि इस साल अभी तक 100 से भी अधिक चरमपंथियों को मारने का दावा किया गया है। बीते तीन वर्षों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, जबकि चरमपंथी हमलों में कई सारे सुरक्षा कर्मी भी मारे गए हैं। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
और आइए एक नजर दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। नवीन नेगी तमाम अखबारों के साथ तैयार हैं।
जी संदीप जी, आज दिल्ली से प्रकाशित तमाम समाचार पत्रों में G20 शिखर सम्मेलन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट की चर्चा सभी अखबारों में है जिसमें उन्होंने मोदी के साथ मुलाकात से पहले जो है अमरीकी उत्पादों पर लगे टैरिफ को कम करने की बात कही थी। इसके अलावा कल मोदी जब जापान पहुंचे तो वहां उन्होंने चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की और उसी तस्वीर के साथ नवभारत टाइम्स ने सुर्खी लगाई है कि जापान में मोदी ने कहा न्यू इंडिया, वहां भारतीयों ने नारे लगाए जय श्री राम। तो इसके अलावा एक और खबर जो कि हर एक अखबार में है वो है हरियाणा में कांग्रेस के प्रवक्ता विकास चौधरी की कल कुछ अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। जनसत्ता में जो खबर है उसके अनुसार हमलावरों ने विकास चौधरी पर दर्जन भर से ज़्यादा गोलियाँ मारी और यह घटना कल सुबह एक जिम के बाहर हुई और पुलिस ने उस जिम के बाहर से 12 गोलियों के खोखे बरामद किए हैं। द हिंदू अखबार में खबर प्रकाशित है जिसमें बताया गया है कि अभिनेता आदित्य पंचोली के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा थाने में एक अभिनेत्री ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है और इस खबर के अनुसार वर्सोवा पुलिस ने बताया कि आरोप लगाने वाली अभिनेत्री ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा दिया है और पुलिस मुंबई पुलिस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने द हिंदू अखबार को बताया है कि उन्होंने पुलिस ने जो है आईपीसी की धारा के तहत रेप, गलत आचरण, मारपीट और आपराधिक रूप से धमकी देने के जो तमाम मामले हैं वो दर्ज किए हैं अभिनेता आदित्य पंचोली के खिलाफ। इंडियन एक्सप्रेस में बड़े बड़े सुर्खियों के साथ एक खबर छपी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को मंजूरी दे दी है जिसमें उन्होंने मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण देने की बात कही थी। इस खबर में बताया गया है कि सरकार की ओर से निर्धारित 16% आरक्षण को घटाकर कोर्ट ने 12% और सरकारी नौकरियों के लिए 13% करने का फैसला सुनाया है।
शुक्रिया नवीन। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से विधायक आकाश विजयवर्गीय को अदालत ने जमानत देने से मना करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आकाश को नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद गिरफ्तार किया गया था। पिता पुत्र के राजनीतिक सफर और उनके कामकाज के तरीके पर भोपाल से सूर्यनियाजी की रिपोर्ट सुने।
इंदौर विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय को बुधवार की घटना के बाद 11 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन कल की घटना के बाद लोग उनमें अब पिता की परछाई देख रहे हैं। इंदौर शहर की राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय हमेशा से उग्र राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी राजनीति ऐसी रही कि कई बार इंदौर शहर के स्थानीय अधिकारियों को उनके गुस्से का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पुत्र उनके विपरीत गंभीर और सौम्य माने जाते रहे हैं। लेकिन बुधवार को हुई घटना ने काफी हद तक उनके बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी कहते हैं,
कैलाश विजयवर्गीय शुरू से ही बहुत आक्रामक तेवर वाले नेता माने जाते हैं। जब वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, जब नगर निगम में कॉर्पोरेटर थे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो वो एक आक्रामक शैली उनकी राजनीति की हमेशा रही है। लेकिन आकाश विजयवर्गीय को इंदौर की राजनीति में इस सबसे इतर माना जाता है। बहुत ही संजीदा व्यक्ति वो माने जाते हैं। देव से महा उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत अलग फ्रंट पे यूथ में जो है वो रिलीजियस स्पिरिट डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। इसलिए ये जो कल घटनाक्रम हुआ, ये लोगों की समझ से परे है।
कैलाश विजयवर्गीय शुरुआत से ही अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अपनी राजनीति के शुरुआत के दौरान इंदौर में एक क्षेत्र में पानी की समस्या के लिए प्रदर्शन करने पहुंचे विजयवर्गीय ने हाथों में जूता उठा लिया था। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने अधिकारियों के साथ जूता इस्तेमाल करने की कोशिश की। इंदौर में एक फैशन शो के आयोजन को लेकर उनके और उस वक्त के कलेक्टर के बीच भी काफी विवाद हुआ था। उस वक्त के कलेक्टर और आज के प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने शहर के कृष्णपुरा छतरी पर फैशन शो का आयोजन किया था। कैलाश विजयवर्गीय इसका विरोध कर रहे थे तो विजयवर्गीय ने भेष बदलकर समारोह स्थल पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। इंदौर की राजनीति को करीब से देखने वाले और कांग्रेस नेता के मिश्रा से जब बाप बेटे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा,
आपराधिक पृष्ठभूमि से जिन लोगों का राजनीतिक जन्म हुआ है उनसे ऐसे ही कृत्यों की उम्मीद की जा सकती है। जहाँ तक आकाश का प्रश्न है, वह मेरा पुत्रवत है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यदि एक अच्छे लड़के ने अपना राजनीतिक हथियार हिंसा के रूप में अख्तियार किया तो उसके राजनीतिक करियर के हिसाब से ऐसी दस्तक उसे भविष्य में पनपने नहीं देगी।
वैसे उन्हें इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का विरोधी माना जाता रहा है। कैलाश विजयवर्गीय नगर निगम पार्षद से लेकर इंदौर के महापौर और फिर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उन्हें शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में उनका प्रतिद्वंदी माना जाता रहा। उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कई बार जोर आजमाइश की, लेकिन उसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी बना दिया गया और फिर वह प्रदेश की राजनीति से दूर चले गए। वहीं उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय की कल की घटना को कुछ लोग स्थानीय निकाय के होने वाले चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले कहती हैं,
आकाश ने कल जो बल्ला चलाया है और जो सियासी तौर पे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की एक दबंग नेता के बतौर, तो मुझे लग रहा है कि ये कहानी जो है वो आने वाले नगर निगम चुनाव में महापौर के पद को लेकर जो एक लीडरशिप को खड़ी करने वाली बात है, वहां पर भी मुझे उसके नजदीक कहीं मुझे आकाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहे हैं।
आकाश विजयवर्गीय ने विदेश से पढ़ाई की है। उन्होंने मास्टर्स सिविल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद इंदौर लौटकर उन्होंने कैब के बिजनेस में कदम रखा और आगे फिर पिता की विधानसभा में कुछ वक्त सक्रिय रहे और पिछले साल के चुनाव में खुद के लिए टिकट पाने में कामयाब रहे। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
अब बात चेन्नई की, जहां पानी के लिए तरसते शहर में एक बुजुर्ग ने पानी बचाने के लिए मिसाल पेश की है। एक ऐसा प्रयास किया है जो दूसरों की भी हिम्मत बढ़ा रहा है। चेन्नई से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
चेन्नई में पानी के संकट ने गरीब और अमीर के बीच का फर्क मिटा दिया है। जैसे कि चेन्नई के रेनमैन डॉक्टर शेखर राघवन ने बताया था, पैसा होने के बावजूद उनके शहर में पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर राघवन की ही तरह चेन्नई में एक और शख्स हैं जो बारिश के पानी का संग्रहण करते हुए आज वो लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। उनका बारिश के पानी का संग्रहण में इतना भरोसा भी है कि वो फक्र से कहते हैं कि उन्होंने चेन्नई मेट्रो वाटर बोर्ड के पानी का कनेक्शन भी नहीं ले रखा है। इंद्र कुमार ने बीबीसी को अपना घर दिखाते हुए कहा,
यस्टरडे 1 सेंटीमीटर रेन पास्ट, 2 डेज 3 सेंटीमीटर।
जब चेन्नई में महीनों बाद बारिश आई तो 2 दिनों में करीब 3 सेंटीमीटर पानी आया। हमने बारिश के पानी का संग्रहण करते हुए 18,000 लीटर पानी जमा किया है। इतना पानी कई घरों में एक महीने तक उपयोग हो सकता है। ये थे इंद्र कुमार के शब्द। इंद्र कुमार ने अपने घर की छत पर एक छोटी सी टंकी बनवा रखी है। उसके अलावा उस टंकी में एक ननारी जड़ी बूटी का शाख भी है जो पानी को साफ करता है। इस पहले फिल्टर से पानी निचली मंजिल पर दूसरे फिल्टर में जाता है, जहाँ से वह कुएं में जाता है। इंद्र कुमार का कहना है कि वो कुएं का पानी ही पीते हैं जिसमें कई मिनरल्स भी हैं। इंद्र कुमार कहते हैं, हमने 1986 में ये घर बनाया और 12 साल के बाद हमारे कुएं के पानी में थोड़ा कड़वापन आ गया। ये कड़वापन इसलिए आ गया क्योंकि हमारे इलाके में चमड़े के कारखानों से अपशिष्ट जमीनी स्तर के पानी में मिल गया था। हमने तभी बारिश के पानी का संग्रहण करना शुरू कर दिया। 6 महीनों बाद कड़वापन निकल गया। इंद्र कुमार का मानना है कि बारिश के पानी का संग्रहण को खर्च कहना ठीक नहीं है। उनका मानना है कि वो सिर्फ निवेश है हमारे भविष्य के लिए। इमरान कुरैशी, BBC, चेन्नई।
महिलाओं को जागरूक करने के लिए कुछ महिलाओं ने बड़ा ही अनोखा तरीका खोज निकाला है। लखनऊ में एक ऐसा बैंड बनाया गया है जिसमें सारी महिलाएं हैं जो बाकी महिलाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित कर रही हैं। BBC संवाददाता बुशरा शेख की रिपोर्ट।
लखनऊ का महिला बैंड मेरी जिंदगी देश में मौजूद दूसरे तमाम बैंड से बेहद जुदा है। वजह, इनके गाने के बोल और इनकी धुन। ये बैंड लैंगिक और सामाजिक मुद्दों पर गाना बनाते हैं और गाते हैं। लेकिन ये बैंड बना क्यों? संस्थापक जय तिवारी बताती हैं।
बैंड बनते ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम सिर्फ ऐवे ही नहीं गाएंगे, गाएंगे तो कुछ मकसद होगा उसका। कहीं ना कहीं मीडिया में पढ़ती रहती थी कि उस बच्ची को मार दिया गया, बच्ची पैदा हुई मार दी गई, पेट में मार दी गई, जन्म लिया कहीं छोड़ दिया गया। म्यूजिक मुझे लगता है कि इतना अच्छा जरिया है कि आप अपनी बात बहुत ही सटीक कह सकते हैं।
बैंड के शुरुआती दिनों के संघर्षों को याद करते हुए जया कहती हैं,
बैंड को हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स थे नहीं, तो सिर्फ एक अकोस्टिक गिटार खरीदा था 2,500 रुपये का, जो कुछ किचन में रहता था। जैसे 2 चिमटे कर लिए हम लोगों ने, उन पे घुंघरू लपेट लिए, कुछ कर लिया, तो उससे हमारे पास रिदम आ गया था। चम्मच, गिलास, कटोरी, सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट थे शुरू में। किचन के इंस्ट्रूमेंट देख करके लोग थोड़े से वो होते थे, अरे यार क्या ले आए। हम उसको लेकर के चले आए कि यही स्ट्रेंथ है हमारी। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे गाना गाया, मायरी सॉन्ग हमारा।
जया शादीशुदा है, कामकाजी भी।
हम तो झाड़ू पोछा करते हुए गाने लिख देते हैं, हाँ, लेकिन उसमें झाड़ू अलग अंदाज से लग रही होती है, पोछा अलग अंदाज से लग रहा होता है। हम जब बहुत से गाने हैं किचन में, जैसे गाना है हमारा ड्रीमिंग के प्रेशर कुकर की सीटी को बजने दो, मेरे हौसलों के शंख नाद बजने दो, ये गीत तो किचन में ही लिखा गया है।
बैंड में अलग अलग उम्र की महिलाएं हैं। गुलाबी साड़ी पहने, आंखों पर रंगीन चश्मा लगाए ये खूबसूरत महिलाएं जब गाती हैं तो निडरता इनके व्यक्तित्व में भी झलकती है। ऐसी ही निडरता निहारिका दुबे ने भी दिखाई।
एक बार हम ऑटो से आ रहे थे तो ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे कोनी मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे। तो मैंने बस सीधे ऐसे हाथ लिया, उस कोनी ऐसे उठाई, मैंने कहा, इतनी कस के मैटन किया, मैंने कहा तुम्हारा हो गया हो तो तुम अब बताओ। तो वो भी कह रही क्या हो गया, तो ऑटो वाले का क्या क्या हो गया, हमने कहा नहीं नहीं इनके इनको बहुत कोनी मारनी, रुको देख ले जरा। तो अचानक से लगा अच्छा मैं कैसे बोल गई।
अब तक ये बैंड देश के अलग अलग इलाकों में परफॉर्म कर चुका है, लेकिन अपनी कुछ शर्तों पर, जिसके बारे में जया तिवारी बताती हैं।
हमें जब कोई बुलाता है उसकी एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है कि कुछ तो गज़ल गाओ, कुछ तो एंटरटेनमेंट हो। और फीमेल्स हैं तो वो सोचते हैं कि कोई ग्लैमर की दुकान आई है हमारे पास। बैंड को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बुला सकते, बैंड इंफोटेनमेंट के लिए है।
इस बैंड का एकमात्र उद्देश्य है महिलाओं को महिला मुद्दों पर जागरूक करना। बुशरा शेख, BBC।
ना है जाना, पढ़ लिख कर मैं साहिब बनूंगी, सपनों में तेरे रंग भरूंगी।
और इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं नवीन नेगी से।
BBC समाचार। जापान के ओसाका शहर में आज से 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में विपक्षी उम्मीदवार इकरम इमामगुल को मेयर नियुक्त किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासन मुद्दे पर कठोर सोच की तारीफ की है। एप्पल कंपनी के प्रमुख ब्रिटिश डिजाइनर जॉनी ईव ने एप्पल छोड़कर अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार हर दिन की तरह शाम 7:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है।